प्रोक्तं किले तद् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय सचाह पृष्ठः सांख्याय नायांग धृतवृताय। और कोई बोलना चाहता है? ओके। प्रोक्तं किले तद् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय सचाह पृष्ठः सांख्याय नायांग धृतवृताय। सो इसका शब्दार्थ इस प्रकार है, प्रोक्तम कहा गया था किला निश्चय ही एतत् यह भगवत्तमेना भगवान संकर्षण द्वारा निवृत्ति वैराग्य धर्म अभिरताय इस धार्मिक व्रत को धारण करने वाले के लिए तेना उसके द्वारा सनत कुमाराय सनत कुमार को सह उसने च भी आह कहा पृष्ठः पूछे जाने पर सांख्यायनाय सांख्यायन नामक महर्षि को अंगा हे विदुर धृतवृताय व्रत धारण करने वाले को। सो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इस तरह है, सो भागवतम का स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 7 पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा है, इस तरह भगवान शंकरशन ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में सांख्यायन मुनि द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने संकर्षण से सुना था। तात्पर्य, परंपरा प्रणाली की यही विधि है। यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्ध अवस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। इस तरह है, सांख्यायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान संकर्षण से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति योग में 9 बातों में से 2 बातें श्रवण तथा कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्ते। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सो यहाँ पर विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में संवाद हो रहा है और विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे मैत्रेय ऋषि से और मैत्रेय ऋषि उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि विदुर जी ने अनेक प्रश्न पूछे थे और मैत्रेय जी ने उनके बहुत ही सटीक और बहुत ही व्यवहारिक उत्तर दिए और उन उत्तरों को सुनकर विदुर जी ने बोला कि मेरा सारा नष्ट जो शंकाएं थी जो मेरे मन में अज्ञान का अंधकार था वो नष्ट हो गया है और मैं अब दृढ़ता से भगवान की सेवा में लग पाऊँगा और जो बातें आपने कही हैं और मैंने सुनी हैं मैं उन बातों को कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ लेकिन गुरु के चरणों की सेवा के माध्यम से मैं उनका भी अनुभव कर पाऊँगा और उनको भी धीरे धीरे समझ पाऊँगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और जैसा इस श्लोक में बता रहे हैं कि दो बातें यहाँ पर पूरी परंपरा स्थापित हो रही है कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न पूछा तो मैत्रेय जी ने ये नहीं कहा कि मेरे हिसाब से ऐसा है या मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। उन्होंने जो पुरातन समय में जो संवाद घटा सनत कुमार और भगवान संकर्षण में उसका हवाला दिया उन्होंने और सनत कुमार ने भी सुनकर उसको बदलने की कोई चेष्टा नहीं की और सनत कुमार ने जब सांख्यायन ऋषि ने उनसे पूछा तो उन्होंने भी उस संदेश को यथारूप दोहराया। तो जो प्रचारक हैं जो भी आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार करने में रत हैं जो इस सेवा को निभा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो उन्होंने अपने गुरु से और वरिष्ठ वैष्णवों से सुना और जो बात जो शिक्षा पूरी गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रही है पूरी गुरु परंपरा के माध्यम से जो प्राप्त हो रही है वो उस शिक्षा में कुछ भी बदलाव नहीं करके उसको यथारूप दोहराएं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ज्ञान तो प्रभुपाद ने यहाँ जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भक्तिनोद ठाकुर विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर इत्यादि जो आचार्य रहे पहले के समय में अभी वो पुराना हो गया है ज्ञान। हाँ उन्होंने 50 साल 100 साल पहले उन्होंने बातें बताई थी अभी परिवेश बदल गया है अभी कुछ प्रैक्टिकल कुछ जो है इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं है कुछ भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। जैसा ज्ञान भगवान कृष्ण ने सूर्य के देवता विवस्वान को करोड़ों वर्ष पूर्व दिया 5000 वर्ष पूर्व वही ज्ञान बिना किसी बदलाव के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया उन्होंने उसमें बदलाव की कुछ भी ज़रूरत महसूस नहीं की। तो जब करोड़ों वर्ष में भगवान ने दिव्य ज्ञान में बदलाव की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी 100 वर्ष बीत के इस बात को कहे हुए या 500 वर्ष पहले रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने कुछ बात बोली थी अभी इसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल भी कुछ भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सूर्य पहले भी पूर्व से उग रहा था आज भी पूर्व से उग रहा है पहले भी पश्चिम में अस्त हो रहा था आज भी पश्चिम में अस्त हो रहा है पहले भी जितने लोग पैदा हो रहे थे सभी लोग मर रहे थे आज भी वही हाल है। पहले भी जो जीवन की समस्याएं थी वो भी जन्म मृत्यु और जरा व्याधि थी और आज भी वही समस्याएं हमारे सामने मौजूद हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि समस्याओं में बदलाव हो गया है या लोगों की मानसिकता में बदलाव हो गया है। पहले साधनों में अवश्य बदलाव हुआ है। पहले मोबाइल फोन नहीं थे, लेकिन मोबाइल फोन आने से ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बदलाव की आवश्यकता आ गई है दिव्य ज्ञान में, है ना। कुछ भी बदलाव की आवश्यकता बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर नहीं है। जब तक ये श्रद्धा, जब तक ये निष्ठा, जब तक ये विश्वास जब तक नहीं होगा, जब तक हम इस बात में हमारा पूरा दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि हमें भगवान के संदेश में और आचार्यों के संदेश में कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, तब तक हम अच्छे से कभी भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम में कुछ आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। जो भी किसी दूसरे का हृदय बदलने की शक्ति है, वो शक्ति इसलिए है क्योंकि उसमें आचार्यों की शक्ति है उसके अंदर। अगर हम कुछ भी फुल स्टॉप कॉमा भी अगर चेंज करते हैं तो वो शक्ति उसमें से निकल जाएगी, और हम बहुत अधिक प्रयास करेंगे तो भी श्रोताओं का हम हृदय परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, जो कि प्रचार का मुख्य उद्देश्य है कि लोग भोग वृत्ति को छोड़कर सेवा वृत्ति को अपनाएं। सो हमें बहुत ही सावधानी से एक पतिव्रता स्त्री की भांति हमें जो हमारे गुरु हमारे स्वामी जिनसे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी शिक्षाओं को यथारूप दोहराना चाहिए, जैसे कि मैत्रेय ऋषि कर रहे हैं और जैसे कि सनत कुमार जी ने भी किया और हम इसको देख पा रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि यही गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा जो है, कई लोग बोलते हैं कि वो दीक्षा पर आधारित है कि शिक्षा पर आधारित है, तो गुरु परंपरा दीक्षा और शिक्षा दोनों पर आधारित है, लेकिन महत्वपूर्ण बात उसमें शिक्षा की है। तो शिक्षा को ग्रहण करता है, शिक्षा को आत्मसात करता है, गुरु के प्रदान की गई शिक्षा को जो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में दीक्षित है। ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले ली और गुरु की किसी भी बात को मान नहीं रहा, या गुरु की 10 बात में से 9 बात को मान रहा है, 1 बात को नहीं मान रहा, वो उसमें दम नहीं है। दीक्षा का अर्थ है, गुरु परंपरा का अर्थ है गुरु के सारे आदेशों का पालन करना। कई बार हमें लगता है कि गुरु जो हैं वो शायद मेरी स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा लगता है मेरी स्थिति तो बिल्कुल अलग है दूसरे भक्तों से, हो सकता है वो कर पाएगा लेकिन मेरे लिए ऐसा करना संभव नहीं है, गुरु को मेरे बारे में पूरा अंदाज़ा नहीं है। तो वो मैं कुछ बातें मान लेता हूँ और कुछ बातें नहीं मानता, तो ये गुरु से धोखा नहीं है, ये अपने आप से धोखा है। गुरु जब भी शिष्य को ज्ञान देता है तो वो भौतिक स्तर पर स्थित होकर ज्ञान नहीं देते, गुरु जो है हमेशा आध्यात्मिक स्थिति से आध्यात्मिक दृष्टि से अपने शिष्य को शिक्षा देते हैं। तो इसमें इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि गुरु को आपकी स्थिति के बारे में नहीं पता, और इसका वर्णन इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं मृगारी जो शिकारी था उसके उदाहरण से। मृगारी जब नारद मुनि की उन्होंने मृगारी ने शरण स्वीकार की और नारद मुनि ने कहा कि तुम जो है, मृगारी ने कहा कि मेरा क्या कर्तव्य, अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो नारद मुनि ने कहा तुम अपना धनुष बाण तोड़ दो। तो मृगारी ने कहा मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा, मेरा परिवार है। तो नारद मुनि ने कहा आप चिंता मत करो, मैं उसका व्यवस्था कर दूंगा। तो मृगारी ने ये नहीं सोचा, उनसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे व्यवस्था कर दोगे, हाँ आपके पास खुद भी आपको एक बीना उठा के इधर उधर घूमते रहते हो, आप कैसे व्यवस्था कर सकते हो। मृगारी ने अपने गुरु की बात में विश्वास किया और सभी प्रकार की हिंसा छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गया। तो जब सब लोगों को पता चला कि मृगारी जैसा बड़ा जो शिकारी है अभी वैष्णव बन गया, तो लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, है ना, और तरह तरह का पदार्थ सामग्री इत्यादि भी लाने लगे। मृगारी की जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा सामान उसके पास आने लग गया। तो मृगारी ने क्या सोचा, क्या मृगारी ने यह सोचा कि देखो मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, लोग मेरे दर्शन से पवित्र हो रहे हैं और सामान लेके आ रहे हैं। तो मृगारी ने सोचा कब मैं दोबारा अपने गुरु के दर्शन कर पाऊंगा, मुझे उनसे कुछ बात कहनी है। हाँ, तो जब नारद जी वहाँ से कुछ समय के बाद वापस निकले तो उन्होंने देखा, सोचा कि चलो मैं, मेरा शिष्य है मृगारी, उससे भी मिलता चलता हूँ। तो जब मृगारी से मिलने गए तो मृगारी ने प्रणाम किया और चींटियों को भी नहीं नुकसान पहुँचे, ऐसे कूद कूद के गया और अपने गुरु को प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने पूछा सब ठीक ठाक है, तो मृगारी ने कहा वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आप जो सामान मुझे भेज रहे हो मेरी आवश्यकता से ज़्यादा है, आप प्लीज़ थोड़ा सामान कम भेजिए। सो मृगारी की जो श्रद्धा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मृगारी ये नहीं सोच रहा था कि मेरे प्रयास से मुझे ये सब साधन प्राप्त हो रहे हैं, मृगारी को पूर्ण विश्वास था कि उनके गुरु ने उनके लिए जो जीवन यापन का प्रबंध किया है। जो श्रद्धा मृगारी की अपने गुरु में थी वही श्रद्धा हमें भी अपने गुरु के प्रति लेके आनी चाहिए, यही गुरु परंपरा का वास्तविक अर्थ है। और यहाँ पर दो और सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण है और हम संक्षेप में उनकी चर्चा करेंगे। पहला सिद्धांत तो है कि श्रवण का सिद्धांत है कि श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रभुपाद अपने ग्रंथों में बता रहे हैं कि श्रवण क्यों महत्वपूर्ण है। श्रवण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सो भी रहा हो तो भी उसकी सुनने की शक्ति सक्रिय रहती है। इसलिए लोग अलार्म लगा के सोते हैं ना नहीं, सो अलार्म बजता है तो सुन के उठ जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग अभी ही अज्ञान रूपी अंधकार में डूब कर, हाँ, भोग रूपी पिशाचनी की गोद में हम लोग अभी सो रहे हैं, लेकिन जब गुरु हमें दिव्य ज्ञान का उपदेश देगा तो उसको सुनकर हमारी जो अज्ञान रूपी तंद्रा है, अज्ञान रूपी निंद्रा से हम उठ सकते हैं और भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। सो ये श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्ति की नौ विधियां हैं, हाँ, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, विष्णु पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण और कीर्तन। और श्रवण और कीर्तन में भी सबसे महत्वपूर्ण श्रवण है, क्योंकि श्रवण के द्वारा ही हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब हम उसका कीर्तन करते हैं तो वो जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान हमें मिला, वो विज्ञान में बदल जाता है। तो कीर्तन का मतलब दूसरों को इसके बारे में बताना और सेवा में लगना भी है ना। तो सेवा के माध्यम से ज्ञान को विज्ञान में बदला जा सकता है। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रवण के माध्यम से, श्रवण का उद्देश्य क्या है, श्रवण का उद्देश्य है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को बदलें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जो भक्ति में लगे हैं, जो हम गुरु से और जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे जो हम दिव्य ज्ञान ले रहे हैं, उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार को बदलें। क्योंकि ये शरीर तो अपनी यात्रा जैसे तैसे जो शरीर मिला है वो निभाएंगे ही, है ना, लेकिन मनुष्य जीवन का कर्तव्य है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसके कारण हमें विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग शरीर प्राप्त हो रहे हैं, अगर हम इस सूक्ष्म शरीर को बदल पाए, अगर हम इस सूक्ष्म शरीर को भगवान की सेवा के सम्मुख कर पाए, विमुखता को हटा पाए, तो हमें अगला जो शरीर है उसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को बदलें, हम अपने मन को बदलें जो कि भोग में लगा हुआ है, और उसको सेवा में लगाएं, हम अपनी बुद्धि को बदलें, जो कि तरह तरह के तर्क और वितर्क में लगी हुई है, और उसको भगवान के जो दिव्य वाणी है, दिव्य शिक्षा है, उसका प्रचार करने में लाए। और जो अहंकार है कि हम हर वस्तु को अपने भोग के लिए समझते हैं, उस अहंकार को हम बदल कर ये सोचें कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भोगी हूँ इसमें भी मैं है, और मैं भगवान का सेवक हूँ इसमें भी मैं है। तो अहंकार दोनों के अंदर है, ऐसा नहीं है कि उसमें अहंकार नहीं है इसमें अहंकार है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ तो उसमें वो सच्चा अहंकार है, और वो अहंकार होना ही चाहिए, ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के उदाहरण से बताया, श्रील प्रभुपाद हमेशा ये बात बहुत ही गर्व के साथ बोलते रहे कि वो अपने गुरु के सेवक हैं, वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सेवक हैं। तो वो अपने गुरु के सेवक होने में, ये घोषणा करने में हमें बहुत ही गर्व का अनुभव करना चाहिए। तो जो दूसरा सिद्धांत जो इस श्लोक में हमें देखने को मिलता है कि सनत कुमार सिद्धावस्था में थे, फिर भी उन्होंने भगवान संकर्षण से श्रवण किया, है ना। तो ये सिद्धांत निकल के आता है कि कोई व्यक्ति चाहे भक्ति में कितना भी जो है एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, कितना भी आगे उन्नत क्यों ना हो जाए, फिर भी उसको श्रवण छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। श्रवण छोड़ने से आध्यात्मिक प्रगति रुक सकती है, और हम भरत महाराज के उदाहरण से देख सकते हैं कि हालांकि वो भावावस्था में थे भक्ति की, लेकिन क्योंकि वो श्रवण अच्छी तरह से नहीं कर पाए, उन्होंने श्रवण करना छोड़ दिया था, भक्तों का संग छूट गया था, इस कारण से वो भावावस्था में होने के बाद भी वो नीचे गिर गए भक्ति से, और उन्हें हिरण का शरीर स्वीकार करना पड़ा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम, चाहे हमें लगे कि हमें बहुत ज़्यादा जानकारी है, फिर भी हमें श्रद्धापूर्वक वरिष्ठ वैष्णवों से और गुरु से हमें सुनना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि दीक्षा की